एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसी कला परंपरा की दुनिया में जा रहे हैं जो मतलब सदियों और महाद्वीपों में फैली हुई है और जिसे अक्सर ना एक ही चश्मे से देखा जाता है, इस्लामिक कला।
हाँ बिल्कुल, और आज हम आइरीन ए बर्मन की किताब इस्लामिक आर्ट पर बात करेंगे।
अच्छा,
ये किताब इसलिए खास है क्योंकि ये इस्लामिक कला की उस आम समझ को चैलेंज करती है जो इसे सिर्फ एक धार्मिक या एक जैसी चीज मान लेती है।
हाँ, कि बस सब एक जैसा।
जी, बर्मन हमें सिखाती हैं कि इस कला को समझने के लिए उसका संदर्भ, उसका मकसद और उसकी जो विविधता है उसे देखना कितना जरूरी है।
सही कहा, अक्सर हम कला को बस खूबसूरती के पैमाने पर देखते हैं ना, लेकिन ये किताब हमें पूछने पर मजबूर करती है कि भाई ये कला आखिर कर क्या रही थी, इसका मकसद क्या था, ये किसके लिए थी। तो आज हम इसी नज़रिए से इस कला को पढ़ने की कोशिश करेंगे, खासकर जो सार्वजनिक जगहों पर लिखे शब्द होते हैं, एपिग्राफी, उसकी भूमिका पर ध्यान देते हुए।
हाँ, ये बहुत ज़रूरी है।
ये जो पश्चिमी कला इतिहास की बनी बनाई व्याख्याएं हैं उनसे थोड़ा आगे जाने की कोशिश है ये।
बिल्कुल, तो शुरुआत शायद लेखिका से करनी चाहिए।
हाँ बिल्कुल, आइरीन ए बर्मन कौन थी है?
आइरीन ए बर्मन 1935 से 2007 तक वो अमेरिका की एक जानी मानी कला इतिहासकार थी और UCLA यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में इस्लामिक कला इतिहास की प्रोफेसर थी।
और उनकी खास बात क्या थी, मतलब कैसे अलग थी वो?
उनकी खास बात ये थी कि वो सिर्फ स्टाइल या खूबसूरती का ब्यौरा नहीं देती थी, उनका ध्यान इस बात पर ज्यादा था कि कला, वास्तुकला, भाषा और शक्ति, ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
अच्छा, ये इंटरकनेक्शन
खासकर इस्लामी दुनिया में वो सेमियोटिक्स यानी संकेतों और प्रतीकों के अध्ययन का इस्तेमाल करके ये पता लगाती थी कि कला अपना संदेश कैसे पहुंचाती है, उसका असल मतलब क्या है। और उनकी एक गहरी दिलचस्पी थी सार्वजनिक स्थानों पर लिखी इबारतों में, एपिग्राफी में।
अच्छा हाँ, आपने जिक्र किया था।
जी, उनकी किताब भी ऐसी पर, राइटिंग साइंस द फैतिमिद पब्लिक टेक्स्ट, ये चीज उन्हें दूसरों से अलग करती है। यहाँ ज्यादातर लोग सुलेखन यानी कैलीग्राफी को बस सजावट मानते हैं।
हाँ, बस एक सुंदर लिखावट।
वहीं बर्मन उसे कला का एक केंद्रीय मतलब एक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल मानती हैं, एक ऐसा तत्व जो पूरी रचना को मायने देता है।
तो उनका नजरिया ही एकदम अलग है, कला कोई शांत सुंदर चीज नहीं है बल्कि
एक एक्टिव एजेंट है।
हाँ, एक्टिव एजेंट। वो पूछती हैं ये कलाकृति क्या भूमिका निभा रही थी, इसका लक्ष्य क्या था, ये समाज में क्या कर रही थी।
बिल्कुल, इस तरह कला सिर्फ देखने की चीज नहीं रहती, वो एक सामाजिक और राजनीतिक शक्ति बन जाती है।
सही, और यही सोच उनकी किताब इस्लामिक आर्ट में दिखती है।
हाँ जी बिल्कुल, ये किताब इस विषय का एक संक्षिप्त कर बहुत गहरा परिचय है और इसका मुख्य उद्देश्य ही इस्लामिक कला की उस एकल मोनोलिथिक छवि को तोड़ना है जो अक्सर हमारे दिमाग में बनी होती है।
दिलचस्प बात यह है कि बर्मन वो पारंपरिक तरीके इस्तेमाल नहीं करती, जैसे राजाओं के वंश या समय के हिसाब से कला को बांट देना।
हाँ, वो उसे रिजेक्ट करती हैं। वो मानती हैं कि ऐसा करने से एक झूठा एहसास होता है कि सारी कला एक जैसी थी।
अच्छा,
जबकि हकीकत यह है कि अलग अलग इलाकों में, अलग अलग समय पर और अलग अलग मकसदों के लिए बनी कला में जबरदस्त विविधता थी, वो तरीके इस विविधता को पकड़ नहीं पाते।
तो फिर किताब का स्ट्रक्चर कैसा है अगर राजवंशों के हिसाब से नहीं है तो?
ये किताब हमें राजाओं की लिस्ट नहीं गिनाती बल्कि एक थीमेटिक सफर पर ले जाती है।
थीमेटिक कैसे?
ये चार मुख्य जगहों के जरिए कला को एक्सप्लोर करती है। मस्जिद यानी पवित्र स्थान,
ठीक है,
फिर महल यानी शासकों की खास दुनिया,
ओके,
फिर शहर यानी आम लोगों का सार्वजनिक दायरा, और आखिर में व्यक्तिगत चीजें, मतलब ऐसी कला जो पोर्टेबल हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सके।
वाओ, ये तो बिल्कुल अलग अप्रोच है। और इस सफर में कौन सी बातें बार बार सामने आती हैं?
कुछ खास बातें हैं। पहली, लेखन का जबरदस्त महत्व। सुलेखन सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, वो अक्सर खुद ही संदेश है।
मतलब क्या संदेश? जैसे?
जैसे ईश्वर का कलाम हो, राजा की ताकत का ऐलान हो, बनवाने वाले की पहचान हो, या फिर बुरी नजर से बचाने वाला कोई तावीज।
अच्छा।
दूसरी बात, इस्लामी डिजाइन की तिकड़ी, सुलेखन, ज्यामितीय पैटर्न और बेल बूटे जिन्हें अरबेस्क कहते हैं।
हाँ, ये तो बहुत कॉमन है।
ये तीनों मिलकर एकता, अनंतता और ईश्वर की बनाई कायनात की खूबसूरती जैसे गहरे मतलब पैदा करते हैं।
और तीसरी बात?
तीसरी अहम बात है जीवित चीजों का चित्रण यानी फिगरल रिप्रेजेंटेशन।
हाँ, इस पर काफी बहस होती है।
हाँ, तो मस्जिदों जैसी पवित्र जगहों पर इससे बचा जाता है, लेकिन महलों की दीवारों पर किताबों के चित्रों में ये खूब देखने को मिलता है। ये दिखाता है कि कॉन्टेक्स्ट कितना मायने रखता है।
बिल्कुल, तो किताब का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि पूरा नजरिया बदलना।
सही।
ताकि हम ज्यादा गहराई और समझदारी से इस कला से जुड़ सकें। ये सिर्फ रूप यानी फॉर्म पर नहीं बल्कि भूमिका यानी रोल और लक्ष्य यानी गोल को समझने पर जोर देती है।
चलिए अब थोड़ा और गहरे उतरते हैं। ये जो शब्द है इस्लामी कला, इसी में थोड़ी पेचीदगी है ना? इसे कैसे समझे?
हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है। बीरमन बताती हैं कि ये शब्द असल में 19वीं शताब्दी में पश्चिम में गढ़ा गया।
अच्छा, ये वहीं से आया है।
हाँ, और ये स्पेन से लेकर भारत तक हजार साल से भी ज्यादा पुरानी और बेहद अलग अलग तरह की कला को एक ही डिब्बे में बंद कर देता है।
ये इस बात को अनदेखा करता है कि ये कला स्थानीय परंपराओं जैसे बाइजेंटीन, ईरानी, सासेनियन इनसे प्रभावित थी। अलग अलग जबानों, अरबी, फारसी, तुर्की और अलग अलग राजनीतिक हालात से मिलकर बनी थी। इसमें जबरदस्त विविधता है।
तो इस विविधता को समझने के लिए बीरमन का पहला पड़ाव है लेखन कमांड संभालता है।
राइटिंग टेक्स कमांड।
यहां से शुरुआत क्यों?
क्योंकि बीरमन का तर्क है कि अरबी में कुरान के आने से इस्लामी संस्कृति में लिखने की क्रिया को एक बुनियादी और खास अहमियत मिल गई।
हाँ, शब्द का महत्व।
बिल्कुल, अरबी लिपि सिर्फ लिखने का एक तरीका नहीं रही बल्कि वो खुद एक आला दर्जे की कला बन गई। और यहीं पर पब्लिक टेक्स्ट यानी सार्वजनिक पाठ का विचार आता है।
पब्लिक टेक्स्ट मतलब?
मतलब इमारतों, सिक्कों, कपड़ों पर जो लिखावट होती है वो सिर्फ सजावट नहीं है।
तो फिर वो क्या है? अगर सिर्फ सजावट नहीं तो उसका रोल क्या है?
वो क्रियात्मक है, परफॉर्मेटिव है, यानी वो सक्रिय रूप से कुछ कर रही है।
अच्छा,
वो एक राजनीतिक और धार्मिक बयान दे रही है। किसी इमारत पर कुछ लिखवाना एक तरह का दावा पेश करना है, अपनी पहचान और ताकत का ऐलान करना है।
इसका कोई ठोस उदाहरण जहां ये पब्लिक टेक्स्ट अपना काम कर रहा हो?
यरूशलेम में बना डोम ऑफ द रॉक।
हाँ, सुना है, बहुत खूबसूरत है।
बहुत। बीरमन बताती हैं कि उसके अंदर जो सोने के मोज़ेक से विशाल शिलालेख बने हैं उनमें कुरान की आयतें हैं, लेकिन ये आयतें यूं ही नहीं चुननी गईं।
तो
इन्हें खास तौर पर यरूशलेम की उस वक्त की ईसाई आबादी को ध्यान में रखकर चुना गया था।
अच्छा, क्यों?
ये आयतें इस्लाम के एकेश्वरवाद यानी तौहीद और ईसा मसीह के पैगंबर होने पर जोर देती हैं, न कि ईश्वर का पुत्र होने पर।
ओ, तो ये तो सीधा।
हाँ, ये सीधे सीधे ईसाई मान्यताओं को चुनौती थी। तो ये इमारत अपने लिखे हुए टेक्स्ट के जरिए अपने आसपास के माहौल से एक धार्मिक और राजनीतिक बहस कर रही थी।
कमाल है, ये सिर्फ एक इमारत नहीं, एक मुखर बयान थी। ये तो कला के मकसद या गोल का सीधा उदाहरण है।
बिल्कुल।
चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं, पवित्र की कला, जिसका केंद्र बिंदु है मस्जिद।
जी, मस्जिद यानी सामुदायिक इबादत की जगह। यहाँ का माहौल, इसकी बनावट, इसकी सजावट सब मिलकर नमाज के लिए एक सुकून भरी जगह बनाते हैं और इस्लाम की बुनियादी मान्यताओं को दर्शाते हैं।
बीरमन इसमें क्या खास देखती हैं?
वो सिर्फ ये नहीं बताती कि मस्जिद कैसी दिखती है बल्कि उसके जरूरी हिस्सों जैसे मेहराब, जो मक्का की दिशा बताता है, मिंबर जहां से उपदेश दिया जाता है, और मीनार, इनके काम और इनके प्रतीकात्मक अर्थों का विश्लेषण करती हैं।
और यहाँ जीवित चीजों का चित्रण लगभग न के बराबर होता है ना? इसका क्या कारण है?
हाँ, धार्मिक कला ज्यादातर गैर अलंकारिक यानी एनी आइकॉनिक होती है। ऐसा मूर्ति पूजा के डर से बचने और इबादत करने वाले का ध्यान ईश्वर की अमूर्त निराकार प्रकृति की ओर ले जाने के लिए किया जाता है।
इसीलिए पैटर्न और लिखावट पर ज्यादा जोर होता है।
बिल्कुल, इसलिए यहाँ जोर लिखावट यानी सुलेखन और जानेतीय या बेल बूटों वाले पैटर्न पर होता है। ये पैटर्न अक्सर अनंतता और व्यवस्था का एहसास कराते हैं।
कोई ऐसी मस्जिद जो इस सोच को खास तौर पर दर्शाती हो?
स्पेन में कॉर्डोवा की महान मस्जिद है।
हाँ, उसका नाम सुना है।
उसका अंदरूनी हिस्सा देखिए, जहाँ सैकड़ों खंभे एक कतार में खड़े हैं, हाइपोस्टाइल हॉल। वो एक अंतहीन बिना बटे हुए स्थान का आभास कराता है,
जैसे ईश्वर के सामने सब बराबर।
हाँ बिल्कुल, ये ईश्वर के सामने सभी इंसानों की बराबरी का प्रतीक है। और उसकी वो मशहूर दो मंजिला लाल और सफेद मेहराबें, जैसे कोई जंगल हो।
हाँ, तस्वीरें देखी हैं।
बाद में जब शासकों ने इसमें विस्तार किया, खासकर मेहराब के पास जो शानदार गुंबद बनवाया जिस पर जबरदस्त सुलेखन है, वो दिखाता है कि कैसे शासक धार्मिक इमारतों को बनवाने का इस्तेमाल अपनी हुकूमत को जायज ठहराने और अपनी दीनदारी और दौलत का दिखावा करने के लिए करते थे। यहाँ भी कला का एक साफ रोल और गोल नजर आता है।
सही बात है।
मस्जिद के स्थालित्र और सार्वजनिक माहौल से निकलकर अब हम एक अलग दुनिया में चलते हैं, महल की खास धर्मनिरपेक्ष दुनिया। यह है दरबार की कलाएं। यहाँ तो कला के नियम जरूर बदलते होंगे।
बिल्कुल, यहाँ कला का पहला मकसद शासक की ताकत, उसकी दौलत, उसकी नफासत और उसकी हुकूमत की वैधता दिखाना था।
तो यहाँ छूट ज्यादा थी।
हाँ, मस्जिद से एकदम उलट। यहाँ महंगी चीजें, रेशम, हाथी दांत, सोने चांदी और जीवित चीजों के चित्र बनाने की न सिर्फ इजाजत थी बल्कि उन्हें बढ़ावा भी दिया जाता था।
तो महलों में किस तरह की तस्वीरें या सजावट आम थी?
दो तरह के विषय खास तौर पर दिखते हैं। एक राजसी चक्र, जिसमें शिकार करना, दावतें देना, ताज पहनना जैसे शाही जीवन के नज़ारे होते थे। ये सब शासक की शक्ति और लाइफस्टाइल का प्रदर्शन थे।
अच्छा।
दूसरी धरती पर स्वर्ग का विचार, जिसे हरे भरे बागों, बहते पानी के फव्वारों और बेहद बारीक सजावट के जरिए दिखाने की कोशिश की जाती थी।
और इसका सबसे जाना माना उदाहरण?
अल्हम्ब्रा।
हाँ, स्पेन में ग्रेनाडा का अल्हम्ब्रा पैलेस। जिस तरह से उसकी बनावट, आंगनों, पानी की नहरों और दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी, स्टुको वर्क को एक साथ लाती है, वो अद्भुत है।
और वहाँ भी लिखावट है।
हाँ, और सबसे खास बात, दीवारों पर लिखी इबारतें, ये कुरान की आयतें नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष कविताएं हैं जो महल की खूबसूरती और शासक की शान में लिखी गई हैं।
अरे वाह,
ये कला एक सीमित पढ़े लिखे दर्शक वर्ग के लिए थी जो इसके पेचीदा नजारों और साहित्यिक इशारों को समझ सकें। यहाँ कला का लक्ष्य शासक की भव्यता का गुणगान करना था।
समझ गई, महलों की इस खास दुनिया से बाहर निकलकर अब पूरे शहर के माहौल को देखते हैं। शहर की कला, इसमें क्या क्या शामिल है?
इसमें मस्जिदें और महल तो हैं ही, लेकिन साथ में बाजार यानी सूख, मदरसे यानी स्कूल, बीमारिस्तान यानी अस्पताल और बड़े बड़े मकबरे भी आते हैं।
अच्छा, पूरा शहरी लैंडस्केप।
हाँ, यहाँ हम देखते हैं कि कैसे अमीर लोग, शासक, वजीर, दौलतमंद व्यापारी शहर में बड़ी बड़ी इमारतें बनवाकर अपनी धर्मपरायणता, अपनी दरियादिली और समाज में अपनी हैसियत का इजहार करते थे। ये शहर के नक्शे पर अपनी छाप छोड़ने जैसा था।
ये दिलचस्प है कि इमारतें सिर्फ जरूरत पूरी नहीं कर रही बल्कि एक सामाजिक संदेश भी दे रही हैं। इन्हें बनाने के लिए पैसा कहाँ से आता था?
एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका था, वक्फ।
वक्फ, वो क्या होता है?
यानी किसी जायदाद को धार्मिक या सामाजिक काम के लिए दान कर देना। बहुत सारी सार्वजनिक इमारतें इसी वक्फ के पैसे से बनी।
अच्छा।
ये अमीर लोगों के लिए समाज की सेवा करने का भी जरिया था और अपनी जायदाद और नाम को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने का भी।
शहरी कला का कोई ऐसा उदाहरण जो शहर पर अपनी छाप छोड़ता हो?
उज़्बेकिस्तान में समरकंद का रेगिस्तान स्क्वायर सोचिए।
हाँ, बहुत मशहूर है।
वहाँ तीन बड़े मदरसे आमने सामने खड़े हैं। उनका विशाल आकार, उनकी मिलती जुलती बनावट और उनकी दीवारों पर लगी चमकदार नीली टाइलें, ये सब मिलकर शहरी योजना को एक राजनीतिक कला के तौर पर पेश करते हैं।
मतलब सिर्फ स्कूल नहीं थे वो?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इमारतें सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की जगह नहीं है, ये शहर के जीवन के लिए एक शानदार मंच तैयार करती हैं और शाही ताकत का एक स्थायी ऐलान है। इनका लक्ष्य साफ तौर पर राजनीतिक और सामाजिक था।
अभी तक हमने बड़ी बड़ी इमारतों की बात की। किताब का आखिरी हिस्सा हमें छोटी लाने ले जाने लायक चीजों की तरफ ले जाता है, वस्तु की कलाएं।
हाँ, इसमें चीनी मिट्टी के बर्तन यानी सिरामिक, मेटल वर्क, कपड़े, कांच का सामान और हाथ से लिखी और चित्रित किताबें यानी पांडुलिपियां आती हैं।
ये छोटी चीजें भी उतनी ही जरूरी थीं।
हाँ, बीरमन का तर्क है कि ये छोटी चीजें बहुत अहम थीं क्योंकि इनके जरिए कला के नए विचार, डिजाइन और तकनीकें इस्लामी दुनिया के कोने से दूसरे कोने तक पहुंचती थीं, व्यापार के जरिए, तोहफों के जरिए या लोगों के निजी सामान के रूप में।
तो क्या इन छोटी चीजों पर भी उतनी ही बारीकी से काम होता था? इनका भी कोई खास रोल था?
बिल्कुल, अक्सर वही डिजाइन और लिखावट जो इमारतों पर मिलती है वो इन छोटी चीजों पर भी दिख जाती है। यहाँ गतिशीलता और साझा दृश्य संस्कृति का विचार अहम है।
मतलब एक जगह की चीज दूसरी जगह असर डालती थी।
हाँ, ईरान में बना मिट्टी का कटोरा मिस्र के किसी डिजाइन को प्रभावित कर सकता था। इन चीजों पर लिखी इबारतें मालिक का नाम बता सकती थीं, दुआएं दे सकती थीं जैसे इसके मालिक को इज्जत और खुशहाली मिले।
अच्छा।
या उन पर कविता भी लिखी हो सकती थी। इनका रोल व्यक्तिगत पहचान से लेकर सांस्कृतिक आदान प्रदान तक फैला हुआ था।
कुछ खास तरह की वस्तुएं जो इस दौर में मशहूर थीं?
एक है लस्टरवेयर सिरेमिक।
लस्टरवेयर,
ये मिट्टी के बर्तनों पर एक खास तरह की चमकदार धातु जैसी परत चढ़ाने की तकनीक थी। ये बहुत कीमती और शानदार चीजें मानी जाती थीं।
और
दूसरा उदाहरण है किताबों की कला, खासकर फारसी मिनिएचर पेंटिंग।
हाँ, वो तो बहुत खूबसूरत होती हैं।
जी, शाहनामा यानी राजाओं की किताब जैसी लंबी कविताओं को चित्रित करने में इसने गजब की महारत हासिल की। ये उन जीवित चीजों के चित्रण के लिए एक जरिया बनी जो मस्जिदों में मुमकिन नहीं था।
तो कुल मिलाकर बिरमिन, हमें कला को सिर्फ एक स्थिर वस्तु की तरह देखने के बजाय एक गतिशील प्रक्रिया की तरह देखना सिखाती हैं, जिसमें संदर्भ, उद्देश्य और दर्शक ये सब मिलकर अर्थ पैदा करते हैं।
सही कहा। तो इस पूरी बातचीत से अगर कुछ मुख्य बातें निकालनी हों तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से तीन बातें सबसे ऊपर हैं।
बताइए।
पहली, लेखन की ताकत। ये सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सक्रिय शक्ति है जो संदेश देती है, दावा करती है और पहचान बनाती है।
बिल्कुल। दूसरी बात जो मुझे अहम लगती है वो ये कि कला का मतलब उसके संदर्भ से जुड़ा है।
हाँ।
वही चीज मस्जिद में अलग मतलब रखती है, महल में अलग, और किसी के घर में रखी हो तो शायद और भी अलग। दर्शक कौन है, जगह कौन सी है और मकसद क्या है, ये सब मायने रखता है।
और तीसरी बात, इस्लामिक कला को एक ही खांचे में फिट करने की कोशिश छोड़नी होगी।
हाँ, वो विविधता वाली बात।
जी, स्पेन से भारत तक इतने बड़े इलाके और इतने लंबे समय में फैली कला में जबरदस्त विविधता है। क्षेत्रीय, समय के साथ बदलाव और अलग अलग जरूरतों के हिसाब से बनी कला, इस विविधता को पहचानना जरूरी है।
मैं इसमें दो और बातें जोड़ना चाहूंगी। एक, कला का सामाजिक और राजनीतिक रोल। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं थी बल्कि हुकूमत को जायज ठहराने, ताकत दिखाने और समाज को जोड़ने का एक जरिया भी थी।
सही।
और दूसरी, वो तीन चीजें सुलेखन, ज्यामिति और बेल बूटे कैसे मिलकर एक खास तरह का सौंदर्य बनाती हैं जो बार बार नजर आता है।
हाँ, ये सारी बातें मिलकर हमें दिखाती हैं कि कला समाज से कटकर नहीं होती।
हाँ।
बल्कि उसका एक जरूरी हिस्सा होती है। भारत में भी हम अपने आसपास देखें।
हाँ, चाहे वो अलग अलग संस्कृतियों का मेल हो या सार्वजनिक जगहों पर बने प्रतीक या लिखी इबारतें।
बिल्कुल, हम इन विचारों से आसानी से जुड़ सकते हैं।
किताब में कई ऐसी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। चलिए बीरमन के कुछ मुख्य विचारों पर बात करते हैं जिन्हें हमने अपने शब्दों में ढाला है। पहला, इस्लामी कला शब्द एक नया आविष्कार है जो असलियत को साफ करने से ज्यादा धुंधला करता है।
ये राजनीति, समाज और स्थानीय परंपराओं से मिलकर बनी थी।
हाँ, ये सीधा उस आम धारणा पर चोट करता है कि इस्लामी कला कोई एक चीज है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें ज्यादा गहराई से, ज्यादा आलोचनात्मक नजर से देखने की जरूरत है।
बिल्कुल।
दूसरा विचार, इस्लामी दुनिया में सार्वजनिक जगहों पर लिखी इबारतें सिर्फ इमारतों पर चिपकाई गई सजावट नहीं थी, अक्सर तो वो इमारतें उन इबारतों की वजह से ही वजूद में आई थी।
ये लेखन की ताकत पर बीरमन के जोर को दिखाता है। वो सिर्फ सजावट नहीं बल्कि ताकत का इजहार है, पहचान बनाने का जरिया है। इमारत का मकसद ही अक्सर उस पर लिखे संदेश को पहुंचाना होता था।
और तीसरा, किसी चीज या इमारत का मतलब पहले से तय नहीं होता, मतलब तो उस संदर्भ से बनता है जिसमें उसे देखा जाता है और उस दर्शक वर्ग से जिसके लिए वो बनी है।
ये बात दर्शक और सामाजिक माहौल की अहमियत पर जोर देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अलग अलग लोग अलग अलग माहौल में एक ही चीज को कैसे देखते और समझते होंगे।
सही है। ये ध्यान सिर्फ वस्तु से हटाकर वस्तु, उसके स्थान और उसके देखने वालों के बीच के रिश्ते पर ले जाता है। ये विचार वाकई कला को देखने का नजरिया बदल देते हैं।
बिल्कुल।
अब सवाल ये है कि इन विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इस्तेमाल हो सकता है।
मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने आसपास की दुनिया को ज्यादा ध्यान से देखना और पढ़ना सीख सकते हैं। इसे हम विजुअल लिटरेसी कह सकते हैं।
विजुअल लिटरेसी मतलब?
मतलब हमारे चारों तरफ जो दृश्य संकेत हैं, इमारतों की बनावट, स्मारकों पर लिखी बातें, विज्ञापनों के डिजाइन, उनमें क्या संदेश छिपा है, वो किसके लिए हैं, उनका मकसद क्या है, ये सवाल पूछना हमें ज्यादा जागरूक बनाता है।
हाँ, और ये हमें बनी बनाई धारणाओं को तोड़ने में भी मदद करता है। जैसे इस्लामी दुनिया को एक ही रंग में देखने के बजाय उसकी विविधता और गहराई को समझना।
बिल्कुल, इससे अलग अलग संस्कृतियों के प्रति हमारी समझ और सहानुभूति बढ़ती है।
साथ ही हम ये भी बेहतर समझ सकते हैं कि आज के दौर में सत्ता और संस्थान कला और प्रतीकों का इस्तेमाल कैसे करते हैं अपनी बात कहने या प्रभाव डालने के लिए।
एक और पहलू है रोजमर्रा की चीजों में कला की कद्र करना। ये किताब दिखाती है कि कैसे कला सिर्फ म्यूजियम की चीज नहीं थी बल्कि जिंदगी का हिस्सा थी।
हाँ, घर की टाइलों से लेके पानी पीने के कटोरे तक।
जी, ये हमें अपने आसपास की चीज़ों में छुपी खूबसूरती और उनके मतलब को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। कैसे सुंदरता और उपयोगिता एक साथ चल सकती हैं?
मेरे लिए इस किताब से सबसे बड़ा टेकअवे ये था कि सिर्फ ये देखने के बजाय कि चीज़ कैसी दिखती है यानी फॉर्म, जब हम ये पूछना शुरू करते हैं कि वो क्या करती है यानी फंक्शन, या उसका मकसद क्या है यानी गोल, तो पूरी समझ ही बदल जाती है। ये सवाल कला को जीवंत बना देता है।
और मेरे लिए लेखन की ताकत को इस तरह से समझना कि वो पत्थर पर उकेरा गया एक राजनीतिक भाषण या एक कविता हो सकती है, ये वाकई आंखें खुलने वाला था। ये दिखाता है कि शब्द और छवि मिलकर कितना गहरा असर डाल सकते हैं और कैसे वो सत्ता, पहचान और आस्था से जुड़े होते हैं।
तो आइरीन बीरमैन की ये किताब हमें इस्लामिक कला को एक बंद डिब्बे की तरह नहीं, बल्कि एक चलते फिरते बहुस्तरीय संवाद की तरह देखना सिखाती है।
हाँ, और ये हमें उस संवाद को सुनने और समझने के औजार देती है।
उम्मीद है श्रोताओं को भी इन विचारों पर गौर करने में मजा आएगा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।